रहे थे स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन और इस पुस्तक के मुख्य लेखक जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। जकरिया की पुस्तक में बेबीलोन की बंधुआई से उसकी प्रजा का छुटकारा, इसराइल राज्य का पुनरुद्धार तथा मंदिर में सेवकाई का पुनः आरंभ हो जाना महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तेरी इच्छा
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम बाइबल में से एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जकरिया की पुस्तक जो पुराने नियम में है। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम इस अध्ययन में जाएं, इसके पृष्ठभूमि को देखें, तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज की इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम जकरिया नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब आज हम अपने आपको आपकी निकटता में लाते हैं और वचन में से सीखते हैं, तो प्रभु निश्चित रूप से आपका वचन हमारे प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, इस पुस्तक की उन गंभीर बातों को हमें बताने और सिखाने पाए, हमारे जीवन की त्रुटियों कमियों को हमें दिखाने पाए, ताकि हम अपने आप को सुधार करके आपकी पवित्रता में अपने जीवन को बढ़ा सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें भी आप आशीषित करें, ताकि हर एक जन आज के इस अध्ययन के द्वारा और इस पुस्तक के द्वारा आपको महिमा देने पाए। आप हमारे साथ में हो, हमारे सहायक हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में एक नई पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करेंगे और पुराने नियम की पुस्तकों में से जकर्या की पुस्तक, जो एक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, और इस पुस्तक से हम उन महान बातों को सीखेंगे जिसे परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा हमें देना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, हम इस पुस्तक के परिचय को देखेंगे, इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। जकर्या, जकर्या का अर्थ है यहोवा जिसे स्मरण रखे। वह बेरेक्याह का पुत्र था। बेरेक्याह का अर्थ है यहोवा आशीष देता है। उसका दादा इद्दो था। इद्दो का अर्थ है निर्धारित समय। निश्चय ही ये अर्थपूर्ण नाम इस बात का प्रमाण है कि बेबीलोन से स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। परमेश्वर स्मरण रखता है और निर्धारित समय पर आशीष भी देता है। मेरे मित्रों, जकर्याह नाम इसराइल में एक सामान्य नाम था। पुराने नियम में जकर्याह नाम के 28 व्यक्ति हुए हैं। कुछ बाइबल शिक्षक इस जकर्याह को प्रभु यीशु द्वारा मत्तीरची सुसमाचार 23 अध्याय उसके 35 पद में संदर्भित शहीद जकर्याह मानते हैं, परंतु कुछ टीकाकार इस विचार से सहमत नहीं है। जबकि यहूदी तारगुम के अनुसार एक जकर्याह पवित्र स्थान में मारा गया था, वह भविष्यद्वक्ता था और याजक दोनों था। नहमिया की पुस्तक 12 अध्याय उसके 4 पद में एक इद्दो याजकीय परिवार का मुखिया कहा गया है। इतिहासकार जोसेफुस ने लिखा है कि बारूक का पुत्र जकर्याह मंदिर में जेलोतेस द्वारा मारा गया था। यह घटना यरूशलेम के मंदिर के नष्ट होने से पहले की है। दूसरी ओर आप ध्यान देने के लिए आए, जहां पर हमें इस पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है कि यह पुस्तक पुराने नियम की उत्तम पुस्तकों में से एक है, और नया नियम लूकार्ची सुसमाचार में याजक जकर्याह का उल्लेख करता है, जिसे 400 वर्ष की अंधकारपूर्ण शांति के बाद स्वर्गदूत जिब्राइल ने दर्शन दिया था। एलिशेबा उसकी पत्नी थी। यहां परमेश्वर फिर अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करता है। जकर्याह अर्थात यहोवा स्मरण रखता है। यह भविष्यवाणी 520 ईस्वी पूर्व की है। जकर्याह हगै नबी का समकालीन था। आप इसे देख सकते हैं एज्रा नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद और 6 अध्याय के 14 पद में। मेरे मित्रों, यह पुस्तक रहस्योद्घाटन की पुस्तक है और इसके दर्शन दानियल, यहेजकेल तथा प्रकाशित वाक्य के सदृश्य हैं। दानियल और यहेजकेल का जन्म इसराइल में हुआ था, परंतु जब उन्होंने भविष्यवाणियां लिखी तब वे इसराइल से बाहर थे। जकर्याह का जन्म बेबीलोन की नदियों के तीर पर हुआ था, परंतु उसने अपनी पुस्तक इसराइल में लिखी थी। यह एक रोचक बात है कि दानियेल, यहेजकेल और यहुना तीनों ही ने अपनी पुस्तकें इसराइल से बाहर लिखी थी। केवल जकरिया ही इसराइल में था जब उसने अपने रहस्यमय दर्शन लिखे। स्वदेशी इसराइलियों के अंधकार के समय में उसने महिमा को उसके हर्षातिरेक में और आशा के दर्शनों में देखा। छोटे भविष्यद्वक्ताओं में उसने सबसे अधिक मसीह संबंधित भविष्यवाणियां की हैं। अतः यह पुस्तक महत्वपूर्ण और रोचक है। यद्यपि जकरिया हगै का समकालीन था, उसकी पुस्तक हगै की पुस्तक के सर्वथा विपरीत है। वे परस्पर परिचित थे और एक ही समय एक ही श्रोतागण को संदेश सुनाते थे। हगै मंदिर की नींव नाप रहा था, उसके पांव धरती पर थे, परंतु जकरिया का मस्तिष्क आकाश में उड़ रहा था, जिसे एक ही रात में 10 दर्शन दिखाई दें। वह वास्तव में स्वप्नदर्शी है। दूसरी ओर हगै एक कर्मठ व्यक्ति है, तथापि दोनों ही एक समय में परमेश्वर की प्रजा को एक ही विषय में संदेश सुनाते हैं। दूसरी ओर वे आज हमसे भी बात करते हैं, परंतु अपनी ही शैली में। मेरे प्रियो, हमें यह समझना है कि ऐसे मनुष्यों की आज आवश्यकता है। हमें दोनों ही की आवश्यकता है, स्वप्नदर्शी के साथ एक कर्मठ व्यक्ति की, क्योंकि स्वप्नदर्शी के साथ समस्या यह है कि वे कर्मठ नहीं होते हैं और कर्मठ मनुष्यों में दर्शन की कमी होती है। अतः इन दो की जोड़ी एक आनंददायक जोड़ी है। तो मेरे मित्रों, आइए हम इस परिचय के साथ अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और जकरिया की पुस्तक उसके एक अध्याय में आते हैं। इस अध्याय का विषय है रहस्यमय दर्शन, मेहतियों के बीच घुड़सवार, चार सिंह, चार त्योहार। आइए हम देखेंगे रहस्यमय दर्शन। आरंभिक 6 अध्याय मसीह से संबंधित हैं और प्रभु राज के संदर्भ में हैं। इस अंश में 10 दर्शनों का वृतांत है। ये 10 दर्शन जकरिया ने एक ही रात में देखे थे। यह एक ही रात का अच्छा काम था। तो हम देखते हैं प्रस्तावना और चेतावनी का संदेश। पहला पद जकरिया की पुस्तक की प्रस्तावना है। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए जकरिया की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद। जकरिया 1 अध्याय 1 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। लिखा है दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में। पुस्तक लेखन का समय इस अन्य जाति राजा के राज्य काल में है। बेबीलोन में 70 वर्ष दास अर्थात गुलाम रहने के बाद कुछ इसराइली स्वदेश लौटे। इस समय इसराइल यहूदा में कोई राजा नहीं था। दाऊद का वंश अब गद्दी पर नहीं था और यह समय अन्य जातियों का समय था। कहता है दारा के राज्य के दूसरे वर्ष, यह वही समय है जब हगै भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी, अर्थात वह भी भविष्यवाणी कर रहा था। वे एक ही समय एक ही प्रजा को भविष्यवाणी का वचन सुना रहे थे। हगै ने उसी वर्ष के 6वें महीने में भविष्यवाणी आरंभ की थी और जकरिया ने 2 माह पश्चात अपनी सेवा आरंभ की। यह समय 520 ईस्वी पूर्व का था। हगै के पास परमेश्वर का वचन सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में पहुंचा था। नवंबर महीने में हगै के पास तो कोई संदेश नहीं आया, परंतु परमेश्वर ने जकरिया को नवंबर महीने में संदेश दिया। यहां पर लिखा है, जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास यह वचन पहुंचा। हगै ने भी यही अभिव्यक्ति काम में ली थी। इसका अर्थ है कि जकरिया भी उसी अधिकार से कह रहा था जिस अधिकार से हगै भविष्यद्वक्ता कहता था। यह अभिव्यक्ति इस पुस्तक में 14 बार काम में ली गई है, लगभग एक अध्याय में एक के अनुपात में। आप यहां देख सकते हैं कि यह पुस्तक परमेश्वर के वचन पर बहुत ही अधिक बल देती है। मेरे प्रियो, अब दूसरा पद चेतावनी का संदेश लाता है। परमेश्वर इन लोगों को चेतावनी देता है कि वे बंधुआई में जाने वाले अपने पितरों के चरण चिन्हों पर ना चलें। जकरिया के पुस्तक एक अध्याय उसके दो पद में हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। ध्यान दीजिए, लिखा है कि यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। जकरिया उनसे कह रहा था कि उनके बंधुआई में आने का कारण था कि परमेश्वर उनके पितरों से अत्यधिक अप्रसन्न था। उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था और जकरिया उन्हें चेतावनी दे रहा था कि वे सावधान रहें कि उनसे ऐसी भूल ना हो जाए। मेरे मित्रों, आज हम में से कई के जीवन में भी ऐसी ही बातें घटित हो रही हैं। हमारे पुरखाओं, हमारे पूर्वजों की बातों को लेकर हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि वे गलत थे या सही थे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज इस रास्ते पर चलते थे, इसलिए हम भी चलेंगे। ध्यान रखें कि परमेश्वर उनसे क्रोधित था। यदि आज आप भी उन मार्गों पर चल रहे हैं जो उचित नहीं है, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर क्रोधित है। और इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं, जकरिया उन्हें चेतावनी दे रहा है कि वे सावधान हो जाएं, सावधान रहें और उनके जैसा भूल ना करें। आगे कहता है जकरिया की पुस्तक एक अध्याय उसके तीन पद में लिखा है, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। मेरे प्रियो, आज हम बड़ी ही लापरवाही से इस अभिव्यक्ति को काम में लेते हैं, परंतु यह एक महान महत्व की अभिव्यक्ति है और यही कारण है कि इस पुस्तक में यह अभिव्यक्ति 52 बार प्रकट होती है। सेनाओं का जो मूल इब्रानी शब्द है, उसका अर्थ है सेवा, बल और युद्ध भी है। डॉक्टर फासेट्स की परिभाषा है कि इसका अभिप्राय है, परमेश्वर के लोगों की भलाई के निमित्त उसके आदेश पर अतः संसाधन। नए नियम में लिखा है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में कि वह दया का धनी है, और तब मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे मित्रों, आपको क्या चाहिए? दया। वह दया का धनी है और वह आपको असीमित दया दे सकता है। वह सेनाओं का यहोवा है। इस पद में 3 बार उसे सेनाओं का यहोवा कहा गया है और फिर पद 4 और पद 6 में भी, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। देखिए परमेश्वर कैसे उन पर दया बरसा रहा है। आज वह मुझसे और आपसे भी यही कहता है कि परमेश्वर की ओर फिरो। मेरे मित्रों, यदि आप पापमय जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर से दूर हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यह वचन है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। पवित्रता का जीवन जियो, नम्रता का जीवन जियो, अपने पापों से दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी ओर बुलाना चाहता है। जब तक आप इन बातों को नहीं छोड़ेंगे, आप उसकी ओर नहीं लौट सकते हैं। आप किसकी ओर फिरना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर या संसार की ओर? जकरिया 1:4 में आगे कहता है, अपने पुरखाओं के समान न बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद् वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है। यह परमेश्वर की व्यवहारिक चेतावनी है। वह कहता है कि तुम्हारे बाप दादों ने मेरे भेजे हुए भविष्यद् वक्ताओं की बात नहीं सुनी, जैसा कि आज भी हम लोग परमेश्वर के दासों की बातों को नहीं सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को हम तक, उसकी सत्यता को हम तक पहुंचाते हैं। वह कहता है, मैंने होशे को तुम्हारे पास भेजा, युएल नबी को भेजा, आमोस नबी को भेजा, यशाया को भेजा, यर्मिया को भेजा, परंतु उन्होंने उनकी चेतावनियों को नहीं माना, नहीं सुना। इसका परिणाम यह हुआ कि वे बंधुआई में चले गए। इसलिए यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर बहुत दुख के साथ कहता है कि उनके पूर्वजों ने उनकी बातों को नहीं सुना। आगे कहता है जकरिया 1:5 में, तुम्हारे पुरखा कहां रहे? भविष्यद् वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि पूर्वकालीन भविष्यद् वक्ताओं की वाणी तो अब सुनाई नहीं देती है। वे संसार से कूच कर चुके हैं। और तुम्हारे बाप दादा कहां हैं? वे बेबीलोन में दफन हो गए, जबकि इसराइलियों को तो अपने देश इसराइल में ही दफन होना था। याकूब ने भी मरते समय मिस्र में यूसुफ से शपथ खिलवाई थी कि वह उसे मिस्र में दफन ना करे। उसने कहा था, मैं चाहता हूं कि मुझे अपने बाप दादों के साथ दफन किया जाए। उसकी अस्थियां आज वहीं हेब्रोन में दफन है। इसराइल के पितरों और सब ईश्वर भक्त इसराइलियों की यही एक मनोकामना थी कि वे पुनरुत्थान के समय अपने देश में हों। यरूशलेम में पूर्वी फाटक के सामने किद्रोन घाटी में जैतून के पर्वत की ओर इसराइलियों की कब्रें हैं, यद्यपि अरबों ने उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया है, परंतु इसराइल उन्हें फिर से सुधार रहा है। वे वहीं दफन होना चाहते हैं, क्योंकि वे मसीह को वहीं उतरता हुआ देखना चाहते हैं। मेरा अपना विचार यह भी है कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा, तब उनका भी पुनरुत्थान होगा। मैं आपको फिर से स्मरण कराना चाहता हूं कि विश्वासियों के उठाए जाने के समय प्रभु यीशु पृथ्वी पर नहीं आएगा। वह अपने लोगों को पुकारेगा और हम सब उसके पास ऊपर उठा लिए जाएंगे। उस समय वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित नहीं करेगा। उसका राज्य स्थापित होने से पूर्व इस संसार को महाक्लेश का समय देखना है। अतः पुराने नियम के भक्त जनों का पुनरुत्थान महाक्लेश से पूर्व नहीं होगा। अन्यथा उन्हें प्रभु राज में प्रवेश हेतु प्रतीक्षा करना होगा। जकरिया के द्वारा पूछा गया परमेश्वर का प्रश्न अत्यधिक गंभीर है। तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? वे बेबीलोन की नदियों के तीर पर दफन हैं। आपकी आशा इस्राएल देश में है, तो यह अत्यधिक दुखदायी बात है। प्रश्न यह है कि आपके पुरखा कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। जकरिया एक अध्याय के 6 पद में आगे कहता है, परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। लिखा है, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? अर्थात उनके पाप का दंड भविष्यवाणी के अनुसार ही उन्हें मिला। आगे लिखा है, तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। उन्हें अंत में यह बोध हो गया कि परमेश्वर ने उन्हें जो दंड दिया वह परमेश्वर की ओर से न्याय और धार्मिकता का ही था, क्योंकि उसने उन्हें चेतावनी दी थी, परंतु उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। व्यवहारिकता के इस भाग का यहां पर अंत होता है। आगे के वृतांत में जकरिया के दर्शनों का वर्णन किया गया है। जकरिया के दर्शनों के विषय में कुछ टीकाकारों का विचार है कि वे 8 दर्शन हैं, परंतु हम इसका अतिरिक्त विभाजन करेंगे, जैसा कि हम अगले अध्ययन में देखेंगे। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।